Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Gambhiranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad ki pratham adhyay sambandh bhashya ka vichar chal raha hai. To kal hum ye vichar kar rahe the jo विद्वान ऋषि का अवश्य है। जब विद्वान ऋषि तो उन लोगों का भी कहना है कि किसके लिए हम ये अध्ययन करेंगे ज्ञान प्राप्त होने के बाद, क्योंकि तम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च। जब पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा से उठ करके आदमी साधक जो भिक्षाटन करके जीता है, फिर ये अध्ययन ये सब ये कर्म सब किसके लिए कर रहा, क्योंकि जिस उद्देश्य कर रहा था वो उद्देश्य को तो प्राप्त कर लिया हा? फिर उद्देश्य पूर्ति होने के बाद फिर उसमें प्रवृत्ति क्यों होगा, क्या प्रयोजन उसका? प्रयोजन प्राप्त होने के बाद फिर उसमें प्रवृत्ति क्यों होगा फिर? तो ये प्रश्न है। अब इसके लिए अभी कितने सारे प्रश्न उठेगा, तो फिर किसके लिए करता है? यदि शरीर से यदि हो रहा है तो फिर कैसे हो रहा है? फिर आपको बहुत सारे जो है तर्क वितर्क अनुभव तर्क से सिद्ध करना पड़ेगा। यदि कोई क्रिया यदि कोई करता है कि उसके उसका ये उद्देश्य नहीं कि उसका फल ही प्राप्त करूं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी होता है कि उसके शरीर से क्रिया हो रही है, हाँ ऐसा भी होता होगा। बहुत सारे जो आपको सिद्ध करना पड़ेगा फिर, हाँ इसमें ही गाड़ी फंसती है। साधक का मन इसमें ही लटक जाता है, भक्तों का मन जो इसमें लटक जाता है। आखिर में यदि कोई तत्व ज्ञानी होता है, जीवन मुक्त पुरुष होता है, तो उससे ये क्रिया क्यों हो रही है? क्या तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। यदि हो रहा है तो यदि क्रिया हो रही है तो फिर क्यों हो रही है, किस उद्देश्य हो रही है? यदि उद्देश्य तो कहीं ना कहीं लटका हुआ है। ऐसा फिर देखते हैं तो फिर तो जनगादि ये सब कैसे क्रिया कर रहे हैं? शंकराचार्य भगवान भी ऐसे क्यों मठादि बनवाए? और बड़े बड़े महापुरुष हमारे गुरुजन लोग जहां देख रहे हैं, पूर्वज लोग देख रहे हैं, ये लोग भी तो कर्म करके ही जिए। कोई यज्ञ करता है, कोई यज्ञ करवाता भी है। काशी में एक महात्मा शायद में बता रहा था, वो विदेश जा रहे हैं, हाँ बहुत बड़े मंडलेश्वर, आज उनका उम्र करीब हो गया होगा 90 हो गया होगा, काशी में बहुत यति कृष्ण यति ना ऐसे उसका नाम है। तो वो जाएंगे, उनका सारे जो लिंग का अभिषेक करते हैं, सन्यासी महात्मा है, बहुत सारे मठ हैं, गाजीपुर आदि सब मठ हैं। अब पूरे पेट्टी को इतने बड़े दो पेट्टी है, जैसे मिलिट्री वालों का पेट्टी होता है ना, इतना बड़ा पेट्टी दो बक्स में सारे उनका चांदी का सामान रहता है, बर्तन फर्तन सब रहता है, भगवान को जो पूजा करते हैं पूरा। भाई प्लेन भी जाएंगे, बस सारे उठा के लेके जाएंगे, और जहां उतरेंगे वहां रात 12 भी बजेगा, तो 12 बजे रात में फिर अभिषेक, भगवान का अभिषेक करके पूरा सारा पेटी खोल कर पूरा सब व्यवस्था, उनकी व्यवस्था देखोगे ना देखने के लायक है, मंदिर भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। सारी व्यवस्था पर पूजा करेंगे, इतनी करने के बाद ही रात में सोएंगे। अभी इतना कड़क नियम है उनका। अब इतने बड़े सन्यासी महात्मा अब यही से पूजन में कैसे लगे हुए हैं, देखने से ऐसे भी लगता है। और यज्ञ करवाते हैं ऐसे, से फिर देखने से फिर होता है कि संशय हो जाता है, अरे क्या ये नाटक, छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, करना है या नहीं करना है, क्या यही तो प्रश्न है ना। फिर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, उसमें जो हमारा जो थोड़ी सी आसक्ति होती है उस आसक्ति को छोड़ेंगे, फल की आशा करते हैं वो फल की आशा छोड़ेंगे। अब फल की आशा ये कोई ऐसा नहीं है कि पेड़ के ऊपर से गिर जाएगा फल को और उस फल का फेंक देंगे, नहीं हमको जरूरत नहीं है, ऐसा तो साफ हो जाएगा। ऐसा यदि फल कोई होता गिरता और फिर आप ऐसे फेंक देते तो आप पूरा साफ हो जाता, हम मुझको फल की कोई आशा ही नहीं है, पूरा साफ हो जाता। ये ऐसा भी नहीं होता है। आप यदि कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, आश्रम की सेवा कर रहे हैं, किसी कोई ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यदि कहीं ना कहीं यदि कोई मान सम्मान की थोड़ी कुछ आकांक्षा होती है तो जरूर कुछ फल की आशा है। कहीं ना कहीं थोड़े टकराव होता है, फल की आशा है, टकराव होगा ही नहीं, एंट्रेंस करते समय ही कुछ ना कुछ रहता है। अब इतने सारे चीजों को सुनते 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 साफ करके लो तो फिर जाकर पूरा निष्काम सेवा होगा। काम है, कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, क्या क्या निष्कर्म है, क्या क्या सारा चीज है, सब समझ के लेना है। आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मरति, जो आत्मा में जो आनंद, आत्मा में ही जो आनंद है, ठीक, यस्तु यानी जो, ठीक, आत्मतृप्तश्च जो आत्मा में ही तृप्त है, यह मानव जो मानव है, जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद और आत्मा ही, जो आत्मा में तृप्त हो जाता है, आत्मा में एव तो संतुष्ट है और आत्मा में ही संतुष्ट होता है और किसी में संतुष्ट नहीं है, तस्य कार्य न विद्यते। अब बताओ फिर उसका कोई करते भी नहीं रह जाता है, हाँ, कोई कार्य नहीं। अब बताओ फिर अभी जो हमारे महात्मा लोग सब जो काम कर रहे हैं ये सब क्या है, फिर ये प्रश्न है। अच्छा, कोई आत्मा में यदि आनंद, आत्मा में तृप्त हो जाता है, आत्मा में यदि संतोष हो जाता है, वो कैसे संतोष होता है? अच्छा, पहले उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा हम दुखी कैसे होते हैं, पहले हम दुखी कैसे होते हैं, फिर हम सुखी, आत्मा में फिर सुखी होंगे। हैं, जैसे हम नहीं खाने से भूख होता है और भूख से हमको दर्द होता है और दुखी हो जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि अभी खाद्य द्रव्य को अभी जुटाओ, अब मेहनत करो, फिर पैसा लाओ, फिर जुटाओ, फिर उसमें लग जाते हैं, और फिर जब खाते हैं उससे फिर द्रव्य का प्राप्त होता है, फिर हम खाते हैं फिर सुखी हो जाते हैं। तो पहले नहीं खाने से जो दुखी हुए, कष्ट हुआ, जैसे फीलिंग होता है और उसमें फिर हम प्रयास में लग जाते हैं, ऐसे यहां हम जो दुखी हो रहे हैं, किसी का कभी रूप को देख रहे हम दुखी हो जाते हैं, अरे वो कितना हैंडसम है, उसको जो उसके पीछे वो एक्टर बन गया, हीरो बन गया, और हमें थोड़ी सी अभी लड़का बन के बात कर रहा हूं। अच्छा, स्त्रियों में थोड़ा सा स्वभाव होता है कि कोई सुंदरी है, थोड़ा सा बैठ कर बातचीत होती है, और ऐसे समय और कोई कन्याएं और कोई स्त्री आ जाती है और वो बहुत थोड़ी सी सुंदरी है, और लोग जो उसके, और पुरुषों का स्वभाव जो थोड़ा सुंदर होती है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जैसे उसके पीछे पड़ जाते हैं ये देखते, अरे देखो उसके पीछे पड़ गए, अगर हमको छोड़ दे। ये जो एक जो कामना है, ये जो निराशा और एक जो कमीपन है जिसको कहते हैं सातिशय दोष, ये हर व्यक्ति के अंदर एक सातिशय दोष होता है। यदि मैं एक थोड़ी सी कुछ व्याख्या करता हूँ, थोड़ी सी बोलता हूँ, और कई महात्मा यहाँ आगे बैठ गए, वो बढ़िया से बोलने लगे और लोग उसके सामने आकर प्रणाम करने लगे, फूल माला डालने, अरे क्या क्या हाल है अभी। ये जो कमीपन जो महसूस है हो रहा है, आप किसी से निकाल सकते हैं इस चीज को, किसी ज्ञान से निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं आप। मुश्किल है आपको, थोड़ा सा कोई काम करता है, अच्छा काम, पैसा कमाता है और हमसे बढ़कर ज्यादा पैसा कमाया, हमारे पास छोटी सी गाड़ी, उसके से बड़ी गाड़ी, ये जो देखते आदमी हमेशा बेचैनपन बोलेगा, नहीं कि मैं बेचैन बेचैन हूं और मैं ऐसा हूं वैसा हूं, लेकिन एक निराशा, एक थोड़ा सा अंदर से टेंशन हो करके दबाव सा होकर जीता रहता है। कोई फ्रेशनेस जो है, पूरा फ्रेशनेस है, एकदम खुल्लम खुल्ला, जैसे वृक्ष से जैसे सूखे पत्ते जैसे गिर जाते हैं और हवा से जो उड़ने लगता है, और कहीं भी वो उड़ता है, इधर हवा आएगा उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, जैसे ऐसे आदमी पूरा बिंदास जो है, मजा से थोड़ी सी भागते रहना है, जाते रहना है, खाते रहना है, कोई किसी का लगाव नहीं, एक मजा जो है ऐसे फील नहीं कर सकता है ना। कितना भी आप दम लगाओ, बिना ये आत्मज्ञान ही जब प्राप्त होता है, उस आत्मज्ञान से फिर बोझ तृप्त होता है। कैसे तृप्त होता है, वो देखेगा कि सामने वाला थोड़ा सुंदर है, अगर हम थोड़ा सा, हम डिसेंट नहीं है, हैंडसम नहीं है, उसको पूछा जा रहा है। यदि आप सोचोगे कि वो भी आत्मा और मैं भी, हम दोनों एक ही है, और उसको जो पूछा जा रहा है वो मुझको ही पूछा जा रहा है, और उसमें जो सुंदरता है वो मेरे में ही वो सुंदरता है, जब तक कि इसको साक्षात्कार नहीं कर सकते हो, केवल सोचने से नहीं चलता है, बिल्कुल एकदम सामने ऐसे जैसे कहा जा रहा है ऐसे लगना ही चाहिए, इतना होने के बाद अच्छा ठीक है, उसको जो पूछा जा रहा है ना तो हमको ही पूछा जा रहा है। और उसको कोई अगर बड़े महात्मा बैठे और उनको फूलमाला डाले और उसके सामने बस 500 आदमी झुक रहे और हमको यहाँ कोई देखने रहा ऐसे जा रहा है, तो उनमें जो झुक रहे हैं तो वो तो हमारे में ही झुक रहे हैं। ये अपने आप में बैठ करके लगा करके तृप्त हो, तब जा करके आत्मा में तृप्त है, आत्मा में संतोष है, सब कुछ आत्मा में ही सिद्ध होगा। अब ये जो नहीं हो रहा है तो ये जो श्रवण ज्ञान जो है ये आपका काम में नहीं आएगा। आपको इतना अभ्यास डालना पड़ेगा, जानबूझकर अभ्यास डालना पड़ेगा। इतनी हो रहा है चलो यही होता है। और ऐसी जगह में जहां इसलिए जो साधुओं को कहा जाता है जहां तुमको सम्मान नहीं मिल रहा है उसी जगह में जाकर रहो, जहां भिक्षा नहीं दे रहे हैं उसी जगह में जाकर जियो, जहां कोई तुमको नहीं जान रहे हैं तो उसी जगह में जाकर जियो और फिर जो ये अभ्यास करो क्या हो रहा है, तब जाकर ये प्राप्त है। ये सारे जो है ये तो आत्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तस्य मानव आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अब ऐसा यदि हो रहा है ठीक है, आकर थोड़ा बैठ गया थोड़ा कुछ बोल दिया, ये फिर क्रिया जो है कोई काम का नहीं, ये थोड़ा होता रहेगा लेकिन अंदर में यदि ये चल रहा है तृप्त हो रहा है तो उसके लिए कोई कार्य फिर जो है विद्यमान नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थ नाकृतेन कश्चन तस्य कृतेन अर्थ न, फिर उसका करने से क्या है, करने से कोई प्रयोजन नहीं है। कृतेन करने से न अर्थ, अर्थ यानी प्रयोजन, कोई प्रयोजन ही नहीं है, करने से कोई प्रयोजन नहीं है। अकृतेन नहीं करने से ठीक है न, फिर नहीं करने से कोई प्रयोजन नहीं है तो फिर आप लोग फिर फंस जाओगे, अरे नहीं करने से कोई प्रयोजन तो नहीं, फिर बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए ना, बात यहां फिर फंस जाती है। करने से कोई प्रयोजन नहीं है, अच्छा ठीक है कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं करने से कोई प्रयोजन नहीं है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नहीं करके फिर चुपचाप बैठना चाहिए ना। हाँ नहीं, वो स्थिति उसकी है, स्थिति उसकी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहां फंस जाते हैं, हम सामने वालों को देख रहे हम फंस जाते हैं। वो जो है सो तो है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो करने से कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं करने से प्रयोजन नहीं, वो तो उसके लिए है। लेकिन अभी जो विचार हो रहा है, अभी हम देख रहे हम जोड़ रहे हैं उसके विषय में लगा रहे हैं तो हम फंस रहे हैं। वो क्या फंसा है क्या नहीं फंसा है वो तो एक स्वविद्य चीज है, वो जानता है उसको प्राप्त हुआ या नहीं प्राप्त हुआ है। अब वो प्रयोजन को देख रहा है या प्रयोजन को नहीं देख रहा है, उसको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, वो तो स्वयं साक्षी है, वो जानता है। लेकिन हम लोग लगा देते हैं अरे इतने बड़ा महात्मा ये कैसे ऐसा कर रहा है, ये हम लगा देते हैं, ये हमारा विषय है। हमको एक महात्मा बड़ा मजा से कहा कहा कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बोल रहे जैसे कोई वाणी बोलता है ना, जैसे ऐसे बोलता है और हम वो तो ऐसे बोलता है और हम लेते समय ऐसे ले जाते हैं, वो दिखाया ऐसा बोलते समय वो ऐसे वाणी ऐसे आ रही है सामने से ऐसे आ रही है और हम लेते समय उसको पलटा कर ले जाते हैं। हम बड़ा मजा आया। तो जो है हम जोड़ देते हैं ये अपने उससे जोड़ देते हैं। और शास्त्र में जबकि ये कहा कि हम जो भी चीज को देखते हैं सोचते हैं विचार करते हैं वो उससे पहले हमारे अंदर में अंतकरण में राग द्वेष अभिनिष्ठ पांच क्लेश पहले से पड़ा हुआ है अंतकरण में, और उस पांच क्लेश से युक्त होकर के यदि वो जिस विषय में उसका राग है जिस विषय में द्वेष है जो भी भरा हुआ है उससे युक्त होकर के ये आंख जो फिर देखने लगती है। जैसे कोई कामुक व्यक्ति है वो 50 साल स्त्री को भी उम्र वाली स्त्री को वो जब देखता है तो उसको जब 20 साल की जैसे लगती है और उसमें फिर भोग करना शुरू करता है। मेरा एक मित्र था कलेश गरीर में और बता रहा था, आश्चर्य लग रहा था, वो मुझको सुना रहा था, उसमें प्रवृत्ति था। अब बताइए, और जब हमारी दृष्टि बदल जाती है हमारे अंदर में कामना ही राग द्वेष स्त्री कामना के विषय में समाप्त हो जाती है तो फिर जो है 17 साल कन्या भी हमको जैसे 70 ईयर्स ओल्ड जैसे लगता है और उसमें प्रवृत्ति नहीं होता है। और किसी किसी को तो स्त्री पार्वती अपने इष्ट देव जी से दिखाई देने लगता है। इतने पवित्र रूप से पूरे देखता है और फिर जो मजा में आनंद में रहता है। तो फिर तो राग द्वेष से युक्त पहले ये अंतकरण जो है, जो राग द्वेष पहले से पड़ा है उससे वो जुड़ा हुआ है, और जब भी आंख खुलती है तो उससे युक्त होकर वो सामने वस्तु को देखती है। ये मन जब भी वो विषय बनाता है तो फिर वो उससे युक्त होकर ही विषय बनाता है। इसलिए सामने क्या है क्या नहीं छोड़ दीजिएगा, हम उससे युक्त होकर हम व्यवहार करते हैं तो फिर हम उससे फिर जो है लिप्त हो जाते हैं, स्वाभाविक बन जाता है। और स्वभाव जब बन जाता है, स्वभाव हम कालांतर से जन्म जन्मांतर से हम भोग करते करते उससे जो एक आसक्ति उत्पन्न हुई और राग द्वेष जो उत्पन्न हुआ, फिर वो राग द्वेष अंतकरण बढ़ जाता है। अब जब भी आंख खुली और वो जो है राग द्वेष युक्त होकर के खुलती है, इसलिए सामने कुछ मत देखना है। जितने भी आपको सोचना है अपने उसे सेंट्रलाइज करके सोचना पड़ेगा, बस यही है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग तप करना है, स्वाध्याय करना है, ईश्वर प्रणिधान है, ये क्रिया योग है। अब इसी से जो है समाधि भावनार्था, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। अब जो है जो ये जो आपका जो क्लेश है जो पड़ा हुआ है, आप जो है बार बार भगवान का समाधि अभ्यास करके, आप समाधि अभ्यास कैसे करेंगे, और फिर क्या कहा कि क्लेश, ये जो क्लेश को तनुकरण करके, तनुकरण यानी उसको जो कमजोर बनाना है, ये जो क्लेश जो पड़ा हुआ है राग द्वेष पड़ा हुआ है, सिंह जैसे बलवान है, अब कितने भी दम लगाओ फिर वो अपना काम करके ही जाता है। अब उसको जो है जैसे बड़े एक जंगली एक हाथी को आप लाकर सर्कस वाले कैसे खिलाते हैं, सिंह को भी खिलाते हैं कैसे, हाँ जैसे कुत्ता जैसे करवाते हैं, आ कैसे किए हो, पहले उसको पकड़े, पहले उसको पकड़े, पकड़ करके उसको जो है बड़ा एक घर में हो चाहे कोई खड्डा करके उसको डाल दिए, रख दिए, और जितना खिलाना है उससे 100 भाग से 10 भाग ही खिलाए, जीवित रखे, जीवित रखते 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 उसके सारे इंद्रियों को कमजोर कर दिए, अब फिर उसको उठा के ऊपर को लाए, फिर जो है उसको जितना दना दे करके फिर नचाए। ऐसे आपके सामने पास में मन, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां कर्म इंद्रिया मन जो पड़े हैं, ये बड़े 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 राक्षस और जो बड़े बड़े बलवान हाथी सिंह जैसे है, उनको कमजोर करना पड़ेगा। इसलिए मैं कल डिस्कस कर रहा था ना, पहले थोड़ा व्यवहार को छोड़ना पड़ता है। इससे क्या होता है कि इंद्रियां जो शिथिल पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। जितना विषय लेते रहोगे वो उतना बलवान होता रहता है। अग्नि में घी डालोगे वो और बलवान होगा। विषय को लिया तो अग्नि में घी डालने की जैसे ही है, इसे कमजोर बनाना पड़ेगा। पहले कमजोर बनाओ, पहले एक ताकत लगाना पड़ेगा, एक पक्ष ही है, पहला पक्ष है, पहले थोड़ा सा कमजोर बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसे ज्ञान देते 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 फिर जो है रूट आउट करना पड़ेगा, बीज को दग्ध करना पड़ेगा, फिर जलाना पड़ेगा। तो वो कहा कि क्लेश को तनुकरण करना, क्लेश को यानी ये जो राग द्वेष आदि को इसे कमजोर करने के लिए, तनुकरण यानी कमजोर दुबला पतला करने के लिए क्या कहा, कहा कि तप करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, ईश्वर प्रणिधान यानी कर्म जो करते हैं तो भगवान चरण में समर्पित करना पड़ेगा, ईश्वर चरण, कोई फल की आकांक्षा नहीं करना, ईश्वर प्रणिधान। अब इन तीनों प्रक्रिया से इसको कहा, जो शायद कोई एक संस्था है ना, वो इसको ये कुछ क्रिया योग करके वो ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, हाँ कुछ करते हैं वो, तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये तीनों को क्रिया योग कहा। और ये योग दर्शन में साधना पाद में आता है। जो समाधि अभ्यास करने के लिए जो समर्थवान नहीं है यानी सीधे इंद्रियों को संयम करके एकाग्रता करके समाधि में चले जाना, जो समर्थवान नहीं है ऐसे साधक के लिए क्या करना है, तो फिर साधना पाद का शुरू होता है। और उस साधना पाद में ये कहा कि तप करना है, लेकिन बड़े ज्ञानी वैराग्य महापुरुष के लिए तप कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, शारीरिक तप आदि कोई जरूरत नहीं है, फिर लेकिन इसको तप करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो ये तीनों बताया। चलो तो कहा कि कृतेन न अर्थः उसे करने से कोई प्रयोजन नहीं है। अकृतेन अकृतेन न कश्चन यानी कोई कोई मतलब जो है कोई कुछ कश्चन न यानी कोई नहीं है कुछ नहीं है मतलब जो है का मतलब जो है नहीं करने से जो आपका जो छह कर्म है क्या क्या कर्म है काम्य निषिद्ध नित्य नैमितिक प्रायश्चित उपासना जो छह कर्म है छह कर्म में जो नित्य नैमित जो नित्य कर्म है इसको यदि नहीं करोगे तो प्रत्यवाय दोष उत्पन्न होता है हा? वो भी नहीं करने से ऐसे ज्ञानियों के लिए यदि कर्म वो नहीं करता अकृतेन यदि नहीं करता है तो भी ये प्रत्यवाय आदि उत्पन्न नहीं होते हैं। हाँ ठीक समझ में आ गई। ऐसा सोच करके अभी से ज्ञानी बनकर छोड़ देना नहीं है। हम लोग ऐसे भी गलत करके बैठते हैं समझना है।